10 नवंबर दिन शुक्रवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को आदर्श राठौर का नमस्कार। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बदली गई टैक्स संरचना, कई चीजों पर घटा जीएसटी।
178 आइटम्स 28 से 18 में ट्रांसफर किए गए। इसकी जो डेट होगी एप्लीकेबिलिटी की वो 15 तारीख से होगी, क्योंकि
अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब कोई नहीं उठा सकेगा अमेरिका का फायदा। विवेचना में सुनिए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में पहली बार जीत का जज्बा भरने वाले टाइगर पटौदी की कहानी।
वो नवाब अपने घर में थे, एक बार वो क्रिकेट फील्ड पर आ गए तो वो सबको साथ लेने की क्षमता रखते थे। जिस तरह से वो अपने आप को फील्ड पर कैरी करते थे, जो उनका एक रुबाब था, उनका जो करिश्मा था वो बियॉन्ड द बाउंड्री था।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि 178 उत्पाद जिन पर 28% जीएसटी लगता था, उन पर अब 18% जीएसटी लगेगा। दो वस्तुओं पर जीएसटी को 12% तक किया गया है। वित्त मंत्री का कहना है कि ये बदलाव 15 नवंबर से लागू होंगे। गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उन्होंने ये घोषणा की। वियतनाम में चल रहे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन में ट्रंप ने कहा है कि वो किसी को भी अमेरिका का फायदा उठाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा अमेरिका के हितों को ही आगे रखेंगे और चाहेंगे कि सभी इसका सम्मान करें। सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन मुक्त व्यापार का चैंपियन है और वो अन्य देशों के व्यापारियों को अपने देश में व्यापार करने में सहूलियतें देगा। इधर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, हम अमेरिका के साथ परस्पर समानता और लाभ की उनकी नीतियों पर काम करना चाहते हैं। हम आने वाले समय में इस बारे में विचार करेंगे और सकारात्मक तरीके से इस पर काम करेंगे ताकि अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक संबंधों में और मजबूती आए और हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत के जरिए सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। ये थी चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत के पर्यावरण पर निगरानी करने वाली संस्था ने प्रदेश के में जहरीले प्रदूषित धुएं और धुंध को कम करने की दिल्ली के अधिकारियों की कोशिशों की आलोचना की है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अगले सप्ताह सड़क पर वाहनों को प्रतिबंधित करने की ऑड इवन योजना को गलत बताया है। ट्राइब्यूनल ने पड़ोसी राज्यों से अपील की है कि वो किसानों को पराली जलाने यानी पुआल जलाने से रोके। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने चेतावनी दी है।
पॉल्यूशन किल्स यू स्लोली, सो व्हाटएवर टॉक्सिक लेवल्स वी आर बीइंग एक्सपोज्ड टू टुडे,
प्रदूषण आपको धीरे धीरे मारता है। आज तक जो जहरीला वातावरण हमें मिल रहा है, अगर वो ऐसे ही 10-15 दिन तक और जारी रहा तो हम में से हर एक की जिंदगी के कई दिन या कई हफ्ते कम हो जाएंगे, लेकिन इसका असर हम कई साल बाद ही देख पाएंगे। याद रहे, कई साल बाद देख पाएंगे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में पुलिस ने दर्जनों भिखारियों को सड़कों पर रहने वाले परिवारों को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अगले सप्ताह हैदराबाद के दौरे पर आने वाली हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि भीख मांगने के खिलाफ लागू किए गए नए कानून के तहत कुछ लोगों को पकड़ा गया है जिसके अनुसार भीख मांगना परेशानी का विषय है और रुकावट पैदा करता है। रूसी संसद का कहना है कि वो अगले सप्ताह एक विधेयक ला सकते हैं जिसके तहत देश में काम कर रहे अमेरिकी मीडिया संस्थाओं को खुद को विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकृत करना होगा। इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग ने आदेश दिया था कि रूस से आर्थिक मदद पाने वाला आरटी टेलीविजन चैनल खुद को विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकृत कराए। अमेरिका के इस आदेश के बाद आरटी चैनल को यह स्पष्ट करना होगा कि वो रूसी सरकार की ओर से अपनी रिपोर्टें प्रकाशित करता है। आरटी ने अमेरिका की मांग को स्वीकार करते हुए कहा था कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। कीनिया की अभिनेत्री ल्यूपिता न्योंगो ने ब्रिटानी पत्रिका ग्रासिया की आलोचना की है और कहा है कि पत्रिका ने अपने कवर के लिए उनकी जो तस्वीर ली थी उसे फोटोशॉप करके बदल दिया और ऐसा कर दिया कि वो यूरोपीय सुंदरी की तरह दिखें। समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक असम के शहर गुवाहाटी में हुई। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद टैक्स की संरचना में कई बदलाव लाए जाने का ऐलान किया गया। हमारे साथ हैं बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। फैसल, क्या कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने?
आदर्श, ऐसा है कि अभी भी बैठक जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अरुण जेटली की। उसमें जो मुख्यतः उन्होंने बात की, उन्होंने ये घोषणा की कि कई ऐसे आइटम्स हैं जिन पे जो जीएसटी का जो प्रतिशत लगता था, यानी कि जो टैक्स की दर थी, उसको कम कर दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
178 आइटम्स 28 से 18 में ट्रांसफर किए गए। इसकी जो डेट होगी एप्लीकेबिलिटी की, वो 15 तारीख से होगी, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को नोटिफिकेशन इसके निकालने होते हैं और उन नोटिफिकेशन में कुछ समय लग जाता है।
आदर्श, हालांकि ये जो है घोषणा अभी आई है और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन इस तरह की जो टैक्स की संरचना है उसमें ये बदलाव हो रहा है। ये बात दिन में ही एक तरह से जाहिर हो गई थी, क्योंकि उसमें कई राज्यों के जो वित्त मंत्री थे वो समय समय पर जब बाहर आ रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बात की। इसी क्रम में जो बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या वहाँ के वित्त मंत्री हैं सुशील मोदी, जो बीजेपी के नेता भी हैं, वो भी बाहर आए। उनकी बात सुनने पर ये अंदाज़ा लगता है कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं में बदलाव लाया गया।
28% का स्लैब था जिसमें पहले 227 आइटम्स थे और फिटमेंट कमिटी ने यह रेकमेंड किया था दैट इट शुड बी प्रून टू 62 आइटम्स, बट द जीएसटी काउंसिल हैज फर्दर प्रून्ड 12 मोर आइटम्स एंड नाउ ऑल टाइप ऑफ च्यूइंग गम, चॉकलेट्स एंड प्रिपरेशंस फॉर फेशियल मेकअप और शेविंग एंड आफ्टर शेविंग लाइक आइटम्स लाइक डिओडोरेंट्स एंड वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट्स एंड ग्रेनाइट एंड मार्बल, ऑल दिस आइटम्स हैव बीन पुट इन द 18% कैटेगरी।
असम के जो वित्त मंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो जीएसटी की एक पैनल है, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी ये जो बात कही थी, उन्होंने ये कहा कि कुछ आइटम्स पर जो है वो 18% से भी कम करके उसको 12% और कुछ पर जो है 5% करने का फैसला किया गया। इसमें एक बात जो उठ रही थी, क्या हुकूमत किसी तरह के दबाव में है, तो आदर्श ये बताना चाहूँगा कि हालांकि अभी इसको लागू हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, जुलाई में ही लागू हुआ है, लेकिन उसके बाद कई तरह के हंगामे होने लगे हैं। विपक्ष जो है वो ये कहने लगा कि सरकार ने बिना सोचे समझे जो है लागू कर दिया, और इसको रेट जो है इसको पहले ये डिसाइड किया गया था कि सिर्फ 18% रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको इतना ज़्यादा कर दिया गया है, वो मैक्सिमम 18% था। मतलब इतना ज़्यादा था कि राहुल गांधी जो हैं, जो अभी गुजरात की कई सभाओं में गए, उन्होंने तो इसका मजाक ये कह के उड़ा डाला कि ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। इसमें जो है शामिल हुए अमित मित्रा जो हैं, वो ममता बनर्जी के पार्टी के हैं, जो विपक्ष के हैं और आजकल विपक्ष के ज़्यादा करीब जा रही हैं। सुनिए कि वो क्या बोलते हैं।
30 अक्टूबर एक चिट्ठी हम लिखे थे माननीय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को, वित्त मंत्री को, कि अगर आप गोल पोस्ट ही हटा रहे हैं आम जनता के जो कष्ट हो रहा है, तो 28% में खाली वही रहे जैसे टोबैको हो, ये ऐसी कुछ हो जिससे किसी को हर्जा पहुंचती है वो, और बड़ा लग्जरी के आइटम, बाकी सबको 28 से नीचे ले जाना चाहिए। आज उस मामले में लड़ाई में कुछ आइटम्स 18 पे ले आया गया।
ये बता दें कि पिछली जो बैठक जो दिल्ली में हुई थी उसमें ये फैसला किया गया था कि 1.5 करोड़ तक जिन कंपनियों के टर्नओवर हैं वो क्वार्टरली जो है अपना रिटर्न भर सकते हैं, वो हर माह की जो इसमें है उसको लेके भी परेशानी थी। और पी चिदम्बरम ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट कर डाला कि धन्य हो गुजरात चुनाव का, जिसकी वजह से सरकार इस बात के लिए मजबूर हो गई है कि वो उसमें बदलाव लाएगी।
शुक्रिया फैसल। तो फैसल मोहम्मद अली बता रहे थे कि जीएसटी को लेकर, बदलाव को लेकर किस तरह के ऐलान किए गए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कहीं गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का इस बदलाव से कोई लेना देना तो नहीं है, क्योंकि वहां पर जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ देर पहले मैंने यही सवाल किया आर्थिक विश्लेषक आलोक पुराणिक से।
सरकार कोई भी काम करेगी उसमें एक राजनीतिक आयाम तो होता ही है, क्योंकि वो राजनीतिक एंटिटी सरकार होती ही है, और जब ये जून में ही जब ये जीएसटी का इम्पोजिशन स्ट्रक्चर जब सामने आया था, तब बहुत सारी चीजों पे था कि जो दैनिक यूज की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, वो 28% के स्लैब में नहीं होके वो 18% के स्लैब में या इससे भी नीचे होनी चाहिए। तो ये डिबेट 3-4 महीने से चल रही थी और तरह तरह से मेमोरेंडम आ रहे थे। कल एक बयान था कि कांग्रेस की सरकारें केंद्र सरकार को मजबूर करेंगी कि ये कम की जाए दरें। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन है जिसमें कांग्रेस ये क्रेडिट ले सकती है कि हमने ये कम करवाया, और भाजपा ये क्रेडिट ले सकती है कि हमने जनता की मांग मानते हुए जो दैनिक रोजमर्रा की चीज यूज की चीजें हैं उसे कम कर दिया। लेकिन देर सवेर ये कम होना था, क्योंकि 28% का जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है वो सिगरेट, शराब या कार या उस तरह की चीजों में तो समझ में आता है, लेकिन अब जो टूथपेस्ट से लेके और शेविंग क्रीम से लेके और बहुत सारी चीजें जहां वहां 28% पे आ रही थी, वहां उसको नीचे आना ही था। तो ये टाइमिंग आगे पीछे हो सकती थी, लेकिन इसको नीचे आना ही था।
टाइमिंग के पीछे जैसा कि राजनीतिक वजह है गुजरात चुनाव, क्या सिर्फ वही वजह नहीं है? मतलब आपका
देखिए राजनीतिक वजह निश्चय ही, कोई भी सरकार कोई डिसीजन करती है तो उसकी राजनीतिक वजह तो होती ही होती है। अब से लेके 2019 तक कोई ना कोई चुनाव होने ही होने हैं। अगर एक महीने बाद होता तो आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के चुनावों की तैयारी में है, एक महीने पहले होता तो कह सकते थे हिमाचल प्रदेश की तैयारियों में है। लेकिन जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत यह है कि यहाँ जो फैसले हो रहे हैं वो कांग्रेस, भाजपा और सारी सरकारें मिलकर कर रही हैं।
लेकिन क्या इससे विपक्ष के वो आरोप पुख्ता नहीं होते नजर आते कि आपने बहुत जल्दबाजी में बिना तैयारी के लागू कर दिया और फिर उसके बाद आपको समझ आ रहा है कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था?
देखिए मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष जो कर रहा है विपक्ष का कर्तव्य है। विपक्ष को सरकार के हर कदम पे पॉइंट आउट करना चाहिए कि यहाँ यहाँ कमियां हैं, और जो सरकार कर रही है वो सरकार का कर्तव्य है। तो ये कांग्रेस या बीजेपी का मतलब नहीं है, मैं इसको पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा मान के देखता हूँ। विपक्ष में जो भी हो वो करना चाहिए और वो कर रही है, और अगर वो फैसला बदलता है तो दोनों पार्टियों को क्रेडिट भी लेना चाहिए, क्योंकि जब यही बीजेपी हुआ उधर हुआ करती थी लगभग इस तरह की बातें वहां से भी आया करती थी।
आप सुन रहे थे वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक आलोक पुराणिक को। अब सुनिए कल बीबीसी इंडिया बोल का मुद्दा क्या है।
बीबीसी इंडिया बोल।
गुजरात विधानसभा चुनाव पर जीएसटी और नोटबंदी का कितना असर पड़ेगा? क्या व्यापारियों, पटेलों और दलितों की नाराजगी का राजनीतिक फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। आप भी अपनी राय जाहिर कीजिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कई देश व्यापार के मामले में अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। शुक्रवार को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों चीन और फिर उत्तर कोरिया के साथ ट्रंप के वाक युद्ध के कारण वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच चुका था। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्वीकरण का समर्थन किया मगर कहा कि इसे थोड़ा लचीला होना चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए प्रियंका दुबे से।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका का फायदा नहीं उठाया जा सकेगा। वियतनाम के दानांग शहर में कारोबारियों और राजनेताओं से उन्होंने कहा कि आज के बाद हम व्यापार में ईमानदारी और बराबरी के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेंगे।
The current trade imbalance is not acceptable. I do not blame China or any other country of which there are many.
व्यापार में मौजूदा असंतुलन अस्वीकार्य है। मैं चीन या अन्य देशों को दोष नहीं देता जिनमें से कई व्यापार में अमेरिका का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इन देशों के प्रतिनिधि तो बस अपना काम कर रहे हैं। काश मेरे देश के पिछले प्रशासन ने इसके बारे में कुछ किया होता। उन्होंने तो नहीं किया मगर मैं करूँगा। मैं हमेशा अमरीका को प्राथमिकता दूंगा और इसी तरह से यहाँ पर मौजूद हर शख्स से उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने देश के लिए ऐसा ही करे।
दरअसल ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले उन्होंने जापान के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी पक्षपातपूर्ण बताया था। वियतनाम में भी उनके तेवर तल्ख रहे। हालांकि उन्होंने अमेरिका और प्रशांत महासागर के देशों की दोस्ती को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
We have been friends, partners and allies in the Indo-Pacific for a long, long time.
हम इंडो पैसिफिक में लंबे समय से दोस्त और पार्टनर रहे हैं। आने वाले समय में भी हम दोस्त, हिस्सेदार और मित्र राष्ट्र बने रहेंगे। पिछली आधी सदी में आपकी तरक्की में मदद करने और इसके गवाह रहने में जितना हर्ष अमेरिका को हुआ है, उतना किसी और को नहीं हुआ।
ट्रंप के भाषण के कुछ ही मिनटों बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण को रोका नहीं जा सकता।
आर्थिक वैश्वीकरण में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दशकों में आर्थिक वैश्वीकरण ने वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस ट्रेंड को बदला नहीं जा सकता, मगर इसके प्रारूप में सुधार की भी जरूरत है। इसे और खुला, संतुलित, निष्पक्ष और सभी के लिए हितकारी बनाना होगा।
चीन के राष्ट्रपति ने बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का पक्ष लेते हुए कहा कि इससे गरीब देशों को मदद मिली है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन उन 21 देशों का मंच है जो प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। यह मंच एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। कल इसके दो दिन के वार्षिक सम्मेलन का समापन होगा।
मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपनी नई किताब डेमोक्रेसी 11 द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी में आज़ादी के बाद भारतीय क्रिकेट की कहानी को 11 महान खिलाड़ियों की जिंदगी के जरिए बयां किया है। इन 11 खिलाड़ियों की लिस्ट में एक थे मंसूर अली खां पटौदी या टाइगर पटौदी। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं टाइगर पटौदी के क्रिकेट जीवन पर।
1 मार्च 1962 को भारत की क्रिकेट टीम बारबाडोस के खिलाफ मैच खेल रही थी। उस समय दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज चार्ली ग्रिफिथ की एक बाउंसर भारतीय कप्तान नॉरी कॉन्ट्रैक्टर के सिर में लगी और वो वहीं पिच पर धराशायी हो गए। चोट इतनी जबरदस्त थी कि कॉन्ट्रैक्टर के नाक और कान से खून बहने लगा। टीम के मैनेजर गुलाम अहमद ने उप कप्तान पटौदी को सूचित किया कि अगले टेस्ट में वो भारतीय टीम के कप्तान होंगे। उस समय पटौदी की उम्र थी मात्र 21 साल और 70 दिन। पटौदी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
सबसे कम उम्र में तो कप्तानी मिली, लेकिन हम टीम में भी सबसे कम उम्र के थे, तो कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई थी बाय डिफॉल्ट। वो बेचारे नाड़ी को लग गई थी चोट। जहाँ तक मुझे इल्म है, कोई अपने क्रिकेट बोर्ड का कोई आइडिया तो नहीं था कि कप्तान बनेंगे। ये 2-3 साल मेरे ख्याल से सोच रहे थे कि अगर टीम में रह सकें तो 3-4 साल के बाद जब नारी कंट्रैक्ट रिटायर होगा तो इनको कप्तान बना लेंगे, ये आइडिया उनका था मेरे ख्याल से। लेकिन अब एकदम डाल दिया उन्होंने समंदर में, तो तैरना पड़ा था। अब तैरने की पूरी कोशिश करी, उसमें हमारे जो साथी थे उन्होंने काफी मदद करी, उनमें सर्टनली एक दो खिलाड़ी थे जिनको नागवार गुजरा होगा।
बिशन सिंह बेदी का मानना है कि भारतीय क्रिकेट में पटौदी हर किसी से कम 100 साल आगे थे। उनकी टीम के एक और सदस्य प्रसन्ना की नजर में पटौदी के मैदान में उतरने के ढंग से पता चल जाता था कि क्लास और लीडरशिप होती क्या है। डेमोक्रेसीज 11 द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी के लेखक राजदीप सरदेसाई बताते हैं,
पटौदी जब कप्तान बने वो भी केवल 21 साल के थे, और तब ये भी किसी को मालूम नहीं था कि क्या पटौदी वाकई टेस्ट लेवल बैट्समैन बन पाएंगे, क्योंकि उनकी एक आंख चली गई थी। लेकिन उस मुसीबत से उन्होंने जिस तरह से भारतीय क्रिकेट को एक दशक के लिए संभाला और एक नेतृत्व दिया, जहां पहली बार इंडियन टीम के क्रिकेटर्स को लगा कि हम केवल बंबई के नहीं, मद्रास के नहीं, कलकत्ता के नहीं, दिल्ली के नहीं, लेकिन हम टीम इंडिया भारत के लिए खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात थी। और दूसरी बड़ी बात थी कि वो खुद नवाब थे, लेकिन इसके बावजूद उनको धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि अगर मैं इंडियन टीम को एक तरह से एक नए दौर की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, तो मुझे एक तरह से आम आदमी की तरह उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। तो वो नवाब अपने घर में थे, लेकिन एक बार वो क्रिकेट फील्ड पर आ गए तो वो सबको साथ लेने की क्षमता रखते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो फील्डिंग पर जोर दिया, जो उन्होंने स्पिन बॉलिंग पर जोर दिया, और जिस तरह से वो अपने आप को फील्ड पर कैरी करते थे, जो उनका एक रुबाब था, उससे लोग इतने प्रभावित हुए कि वो हम कह सकते हैं 1960 का जो दशक है, जहां भारत ज़्यादा मैचें नहीं जीती, लेकिन सबको पटौदी की यादें हैं, और एक तरह से उनका जो करिश्मा था वो बियॉन्ड द बाउंड्री था।
पटौदी का टेस्ट करियर शुरू होने से पहले ही एक बड़ी कार दुर्घटना में उनकी दाहिनी आँख बुरी तरह से जख्मी हो गई थी।
तमाशा ये हुआ था कि ऑगस्ट बैंक हॉलिडे थी ब्राइटन में, और उस जमाने में पहली दफे अपने समंदर के किनारे वो एक डबल ड्यूअल कैरेज वे खुला हुआ था, तो लोग जो बाहर से आते थे ब्राइटन के, उनको आइडिया नहीं था कि डबल हो गया है। तो उसका भी बेचारे का क्या कसूर था, हमारा भी कसूर नहीं था, वो बिल्कुल सामने आ गया गाड़ी के हमारे, और हम लोग जा रहे थे वापस खाना वाना खा के अपने होटल, इसलिए कि पूरे दिन तो फील्डिंग करी थी और थके भी गए। तो अब वो विंड स्क्रीन से टकराई हुई हमारी आँख में, थोड़ी चोट आ गई। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, कोई मेरे साथ 3-4 हफ्ते अस्पताल रहा, फिर एक आँख से खेलने में एडजस्ट करने में काफी मुश्किल हुई।
पटौदी की आँख की सर्जरी हुई लेकिन उनकी आँख ठीक नहीं हो सकी। जब उन्होंने कुछ दिन बाद क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो उन्हें अपनी तरफ 2 गेंदें आती दिखाई देती थी, वो भी एक दूसरे से 6 इंच की दूरी पर। बाद में पटौदी ने अपनी आत्मकथा टाइगर्स टेल में लिखा।
जब मैं लाइटर से अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश करता था तो मैं उसे करीब 1/4 इंच से मिस कर जाता था। जब मैं जग से गिलास में पानी डालने की कोशिश करता तो वो गिलास में न जाकर सीधे मेज पर गिर पड़ता था।
एक आँख से आपको फासला जज करना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर अच्छा स्पिनर थोड़ी बॉल को हवा दे रहा है या कभी चेंज ऑफ पेस हो रहा है तो उससे मुश्किल हो जाती थी, या बहुत फास्ट हो कोई, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि अगर कोई चेंज ऑफ पेस करे या कोई स्पिनर फ्लाइट करे तो पता नहीं चलता था एग्जैक्टली कहाँ बॉल टिप्पा खा रही है, उसमें थोड़ी बहुत हमें कभी कभी गलती हो जाती थी।
पटौदी ने इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 203 नाबाद रन बनाए थे, लेकिन उनका खुद का मानना था कि उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी थी 1967 में मेलबर्न की हरी पिच पर बनाए गए 75 रन। एक टेस्ट में सर्वाधिक कैच लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले यजुर्वेंद्र सिंह टाइगर पटौदी को बहुत नजदीक से जानते थे।
उस वक्त इंडिया बहुत अच्छा नहीं कर रही थी और उनका हैमस्ट्रिंग इंजरी था, उसके पहले टेस्ट मैच में वो नहीं खेले, चंदू भोडे ने कैप्टन किया, तो टीम बहुत बुरी रीत से हारी, इसीलिए टीम ने बोला कि आपका हैमस्ट्रिंग इंजरी है फिर भी आपको खेलना पड़ेगा, तो वो खेले कैप्टन नेचुरली जैसे, तो इंडिया 20/5 थे और वो गया और उनका नेचुरली उनको रनर नहीं मिला क्योंकि मैच के पहले वो इंजर्ड थे। एक पैर में और एक आंख से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मैकेंजी और उनको इतना जोर से मारा, कोई कमेंटेटर था उसने बोला ये ऑस्ट्रेलियन अटैक तो बहुत ऑर्डिनरी होगा कि एक जरा यहाँ है इंडिया का कैप्टन एक आंख और एक पैर से खेल के उनको इतना मार रहे हैं। सेंचुरी तो दोनों इनिंग में हो जाती बट वो लोग भाग ही नहीं सकते थे तो वो खाली एक रन लेते थे। ब्रैडमैन ने भी बोला कि ऐसे हमने कभी देखा ही नहीं है।
पटौदी एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ बला के फील्डर भी थे। जब वो कवर पर खड़े होकर गेंद के पीछे कुलाचे भरते थे तो लगता था कि एक चीता अपने शिकार का पीछा कर रहा हो, शायद इसी वजह से उनका नाम टाइगर पड़ा। राजदीप सरदेसाई पटौदी की फील्डिंग का एक अलग ढंग से विश्लेषण करते हैं।
अगर आप देखें कि जो पहले के प्रिंसेस थे शायद रणजी को छोड़कर ज्यादातर कोई फील्डिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, वो चाहते थे केवल बैट्समैन बने, बॉलर भी नहीं बने, क्योंकि उस जमाने में ये समझा जाता था कि राजा महाराजा बैटिंग करेंगे, बॉलिंग वो करेंगे जिसके पास मसल है, और फील्डिंग वो करेंगे जो आपके नौकर हैं वहाँ आपके उस महल में। पटौदी ने मुझसे ये कहा भी कि मैं जब एक आँख मेरी चली गई तो मैं जानता था कि मैं शायद उतना उस लेवल का बैट्समैन नहीं बन सकता जो मैं चाहता था, लेकिन मैं फील्डर ज़रूर अच्छा बन सकता हूँ, और मैंने फील्डिंग पर बहुत मेहनत की। तो फील्डिंग पर जो उन्होंने मेहनत की उसके लिए तो उनको टाइगर कहा गया कि वो टाइगर की तरह है।
1968 में टाइगर पटौदी की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ शादी हुई। एक बार बीबीसी से बात करते हुए पटौदी ने शर्मिला के साथ अपनी शादी का किस्सा सुनाया था।
ये मुलाकात सब हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे बॉम्बे में, उनकी यहाँ पे हुई थी, हालांकि पहले भी एक दो दफे मुलाकात हो चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ अब 1965 की, लेकिन 65 और 66 में अपन लोग ने तय किया था कि भाई इस रिश्ते को जरा बढ़ाना है और जरा पक्का करना है, तो आप यही समझ लीजिए कि हम लोग 1966 में ये तय कर लिया था कि शादी करेंगे, और शादी फिर 68 में हुई।
दुनिया में शायद दो ही खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्हें अपनी कप्तानी के बल पर राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। एक तो थे इंग्लैंड के माइक ब्रियरली और दूसरे टाइगर पटौदी। पटौदी के भांजे और खुद प्रथम श्रेणी की क्रिकेट खेल चुके साद बिन जंग एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
उस वक्त हम लोग दिल्ली में थे और मैं उनको मामू जान कहता हूँ, और मामू जान मरू हमारे साथ थे, और हमारे घर के पीछे एक सीमेंट का चबूतरा था, तो वो जमाने में एक लाल बॉल हुआ करती थी प्लास्टिक की, तो मामू जान ने कहा कि देखो साथ मुझको तुम फेंको, जितनी देर फेंक सकते हो फेंको, तो मैं फेंकता गया और मामू जान खेलते गए, तकरीबन 12-15 गज पे बैटिंग कर रहे थे एंड ही वाज बैटिंग ब्यूटीफुली, मगर जैसे ही मैंने उनको एक यॉकर फेंकी तो उनको बिल्कुल नहीं दिखी, तो मैंने दूसरी यॉकर फेंकी फिर नहीं दिखी, तो उन्होंने कहा फिर फेंको, फिर मैंने फेंका नहीं दिखी उनको, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये तो नहीं दिख रही, तो मैंने उनको बाउंसर मारी वो भी नहीं दिखी, तो फिर मैंने कहा मामू जान आप कैसे करने वाले हैं, तो उस वक्त उन्होंने राज सिंह से कहा था कि राज सुनो मुझे बैटिंग के लिए मत दो इसलिए कि मैं मुझे बॉल नहीं दिख रही मैं नहीं खेल सकूंगा, तो राज सिंह ने उस वक्त उससे कहा कि जी नहीं हमको आप बैटिंग के लिए मत आइए आप अपने कैप्टनशिप के लिए आइए, इसलिए अगर ये हिंदुस्तान टीम के साथ हमको वेस्ट इंडीज को हराना है तो खाली आपके दिमाग के साथ और आपके कैरेक्टर के साथ हम हरा सकते हैं उनको, तो मामू जान जिनको गेंद नहीं दिख रही थी उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल के टू ऑल लाने का जो सीरीज था उन्होंने इतनी खूब कैप्टनशिप की है और इतनी बहादुरी दिखाई मेरे लिहाज से, जब उनको गेंद दिखी नहीं रही थी, जब उनको रॉबर्ट ने मुंह पे मारा जब भी उनको नहीं दिखा कलकत्ता में, तो मेरे लिहाज से ये आदमी एक जीनियस था और उन्होंने जो घर दिखाया वो टाइम दैट वाज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ एब्सोल्यूट जीनियस।
कम लोगों को पता है कि पटौदी को संगीत का बहुत शौक था, वो तबला बजाना भी जानते थे और अक्सर एक गाना गाया करते थे मेरा लाल दुपट्टा मलमल थे।
लाल दुपट्टा मलमल का झूरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का झूरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी।
पटौदी को जहाज पर सफर करने का फोबिया था, जब वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड के संपादक थे तो मुंबई से कोलकाता ट्रेन से जाया करते थे और उस पत्रिका में काम करने वाले लोगों को हमेशा उनका इंतजार रहता था।
वो हमेशा उत्सुक थे कि पटौदी जी पहुंचे, क्योंकि जब भी वो आते थे वो एक बियर केस लाते थे, हाइनकिन की बियर, और तब ज़्यादा ये फॉरेन बियर मिलते नहीं थे, और उनका हमेशा कहना था कि जो मटन मिलता है वो रांड जो मिलता है वो कलकत्ता में दिल्ली से अच्छा मिलता है, तो वापस वो बिल्कुल बर्फ में उसको बांध कर वो अपने साथ लेकर वापस जाते थे, तो उनको वो एक तरह से उनको लगता था कलकत्ता का मटन दिल्ली के मटन से अच्छा है।
पटौदी जब भी ट्रेन से सफर करते थे तो उनके कूपे के चारों ओर लोगों का जमावड़ा लग जाता था, यजुर्वेंद्र सिंह बताते हैं।
हम लोग का सफर बहुत अच्छा रहता था क्योंकि उनके पास उनका वैलेट है वो बहादुर, वो सब कुछ उनका करता था, उनका कुर्ता भुर्ता सब आयन होके वो ट्रेन में भी सब कुछ इमैक्यूलेट था। उसके बाद जब हमको ड्रिंक्स और वो तो रहते थे तो अगर कुछ भी कम हुआ या सोडा या बर्फ तो वो लोग जिस स्टेशन पे हम रुकते थे वहाँ उनको बताने के वो कंडक्टर वो जाके ले आता था और फिर उसके बाद ट्रेन चलती थी। वैसे भी जब उनका वक्त होता था खाने का तो नेचुरली वो गर्म करना था उनका जो भी खाना था, वी ऑल टुक एडवांटेज ऑफ, ऐसा था उनका बादल जाता था सब ईटिंग करके सब कुछ करने के लिए, फिर उसके बाद उनको गर्म खाने का मिलता था। उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था और जहाँ भी हम लोग रुकते थे जैसे मालूम पड़ा पटौदी है ट्रेन पे तो सब लोग अपने कंपार्टमेंट के पास ही रहते थे।
60 के दशक में पटौदी ने भारतीय क्रिकेट की बागडोर संभाली तो भारतीय क्रिकेट की स्थिति ऐसी ही थी जैसी कि आजकल जिम्बाब्वे की है। ये पटौदी का ही बूता था कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में पहली बार ये विश्वास जगाया कि वो भी जीत सकते हैं।
1965 तक हम बहुत कम क्रिकेट मैच जीते, लगता था कि जिस तरह से आज जिम्बाब्वे है उस तरह से हम केवल मैच खेल रहे, लेकिन जीतने का जो एक जुनून होता है वो टीम में नहीं था। पटौदी ने धीरे धीरे वो एक तरह से वो जगाया लोगों में कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं आप देश के लिए खेलते हैं, आप अपने स्वाभिमान को लेकर उसको आगे बढ़ाइए, इसीलिए मैं कहता हूँ वो एक तरह से एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उन्होंने शुरू की।
रेहान पटेल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। क्षमा चाहेंगे मुख्य समाचारों के लिए समय नहीं बचा है, लेकिन आप bbchindi.com पर देश दुनिया की खबरों जानकारियों और विश्लेषण के लिए आ सकते हैं। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत के साथ फिर हाजिर होंगे। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।